الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلة ہے بندوں کے حقوق. بندوں کے حقوق میں اولاد کے حقوق پر ہم نے پہلے 3 پروگرام کیے ہیں اور آج اس سلسلے میں 4th پروگرام ہے. آج کے پروگرام میں بطور خاص جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تربیت اولاد کا قرآنی منہج کیا ہے, قرآن مجید کا طریقہ کیا ہے کہ کس انداز میں اور کن چیزوں میں اولاد کی تربیت کی جائے. ویسے تو اس کی اکثر باتیں پہلے بیان ہو چکی لیکن خاص قرآن کے تناظر میں اس کا انداز کیا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل بیان کروں گا. اس سے پہلے 2 حقوق کا بیان جو ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے. ان میں سے پہلا حق ہے اولاد کو لقمہ حلال کھلانا. یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو لقمہ حلال کھلائے, کیونکہ جو لقمہ حرام ہے اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. کیونکہ حرام خبیث ہے اور جب خبیث شے کوئی کھاتا ہے تو اس میں اثرات بھی اسی طرح کے جاتے ہیں. شریعت نے, دین نے, اسلام نے جو حلال و حرام کی چیزیں جدا کر کے بیان کی ہیں اس کی بہت سی حکمتیں ہیں, اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حلال کے اپنے اثرات ہیں اور حرام کے اپنے اثرات ہیں. اب وہ اولاد کہ جو خود کما نہیں رہی, جن کے پاس خود اپنے کھانے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو ان کی ذمہ داری ان کے باپ پہ ہوتی ہے, اور باپ جو ان کو پہناتا ہے, جو انہیں کھلاتا پلاتا ہے, تو لازمی بات ہے کہ اسی کے اثرات ان میں منتقل ہوں گے. تو اگر باپ نے اولاد کو لقمہ حرام کھلایا تو اس کا نتیجہ بہت دور تک اولاد کے اخلاق پہ, کردار پہ اور زندگی پہ ہوتا ہے. تو لہٰذا والد پر حق یہ ہے کہ وہ اولاد کو لقمہ حلال کھلائے. پھر اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک دوسرا حق ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے والد خود حلال کمائے گا, حلال کھائے گا, اولاد کو حلال کھلائے گا, اسی طرح وہ اپنی اولاد کو جب وہ سمجھنے کی عمر کو پہنچ جائیں, جب وہ شعور اور تمیز کی عمر کو پہنچ جائیں, تو وہ اپنی اولاد کو حلال و حرام کا فرق سمجھائیں. ایک تو حلال و حرام کا بڑا وسیع دائرہ ہے جو پورے دین کو شامل ہے, جس میں زندگی کے تمام امور کے اندر حلال اور حرام کی فہرستیں ہیں. ایک تو اس اعتبار سے تربیت دینا ہے, لیکن یہاں جو میرا مطلوب ہے وہ ہے کہ اولاد کو خود حلال کمائی کے اوپر سمجھائے اور حرام کمائی سے ان کو بچائے, ان کی تربیت ایسی کرے کہ انہیں حلال اور حرام کا فرق پتا ہو. اور ہمارے معاشرے میں اس شے کی جتنی ضرورت ہے کہ والدین, اہل خانہ بچوں کو حلال و حرام کے بارے میں سمجھائیں, سکھائیں, اس کی اہمیت شاید ہمارے معاشرے میں کسی پر پوشیدہ نہیں. کیونکہ جب ہم لفظ کرپشن استعمال کرتے ہیں, جب ہم رشوت کی بات کرتے ہیں, جب ہم سود کی بات کرتے ہیں, جب ہم لوٹ مار اور دوسرے کے حق مارنے کی بات کرتے ہیں, تو شاید ہمارے سر خود ہی ندامت سے جھک جاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے جو صورت حال ہے وہ بڑی نازک, بڑی خطرناک اور بہت بری ہے. اور شاید ہمارے ملک کے بڑے مسائل میں سے, بلکہ شاید دنیا کے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ رشوت اور کرپشن کا ہے. مال دنیا کی محبت حلال و حرام کی تمیز بلا دیتی ہے, اور پھر جو آسائشات زندگی ہیں ان کے حصول اور ان کی تکمیل جو ہے وہ انسان کو حلال کے راستوں سے پار کر کے حرام تک پہنچا دیتی ہے. اور پھر ہم بعد میں سر پکڑ کے روتے ہیں کہ جناب کسی دفتر میں چلے جائیں, بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا, ہمارا جائز کام ہے وہ بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا, हमारे घर में ये छोटा सा काम था, वो भी पैसे दिए बगैर नहीं हुआ। फलां महकमे से मेरा वास्ता पड़ा, वहाँ तो चलती ही रिश्वत है। हमारी तो फाइलें वो चलती ही तब हैं कि जब उनको नोटों के पहिए लगाए जाएं। ये जितनी बातें हैं, शायद हमारे अखबारात इससे भरे पड़े, हमारी खबरें, हमारी न्यूज़ इससे भरी पड़ी है, हमारे दाएं बाएं इसके मुशाहदात मौजूद हैं, हमारे जायज़ काम भी बगैर इस हराम रिश्वत दिए नहीं होते। क्यों? इसलिए कि दो चीज़ों के अंदर कमी रही। एक कमी तो कानून के निफास में रही कि जिनका काम कानून नाफिज करना और हराम से रोकना और रिश्वत से रोकना था वो कमज़ोर है। लेकिन उसके साथ दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि माँ बाप ने औलाद की तरबियत इस हवाले से की नहीं कि बेटा सिर्फ हलाल कमाना, हराम के करीब ना जाना, हलाल की कम रोजी पे कनाहत करना, हराम की आसाइशों में ना पड़ना। अगर बच्चा कमा के लाए तो माँ बाप और इसी तरह बीवी उसे ये कहने वाली हो कि हमें हलाल की खिलाना खा वो थोड़ी हो, हराम की ना खिलाना अगरचे वो बहुत हो, हमें सादा कपड़े और सादा खुराक दे देना लेकिन हो हलाल से, हमें जो है लग्जरीज के अंदर ना डालना जबकि वो हराम की हो। तो अगर माँ बाप ने बचपन से हलाल हराम समझाए हों और इस हवाले से तरबियत की हो और हराम की खबासत और कराहत उसे बताई हो और उसके दिल के अंदर उसकी नापसंदीदगी उतारी हो, तो फिर हमारे यहाँ जिस कदर हराम पल चुका है और बढ़ चुका है और पिनप चुका है, शायद आज हमारा माशरा वैसा ना होता। इसलिए वालिदैन पर ये जिम्मेदारी है, और सिर्फ वालिदैन पे नहीं, बेसिकली तो ये जिम्मेदारी जो है ये मस्जिदों की भी है, ये मदरसों की भी है, ये उलमा खुतबा की भी है, ये स्कूल कॉलेज के टीचर्स की भी है और इसी तरह रियासत की भी है। लेकिन चूंकि अभी हमारी गुफ्तगू वालिदैन के हवाले से है, हम औलाद के हुकूक जो वालिदैन पर हैं उस हवाले से बात कर रहे हैं, तो उस हवाले से बड़ा ज़रूरी है कि वालिदैन इन चीज़ों पर फोकस करें, औलाद को यूँ बेलगाम ना छोड़ें। उनको कमाई के हवाले से ये नहीं कि कभी बात ही नहीं करनी, बस ये है कि पढ़ाई करवा दी, नौकरी मिल गई, अब उस नौकरी में हलाल करे हराम करे, घर में बस हर महीने नोटों की एक मोटी सी गड्डी आनी चाहिए, ये नहीं। ये वालिदैन ही का फ़र्ज़ है, ये उनकी बात ही ज़्यादा मानी जाएगी। शायद बीवी की बात शौहर इतनी नहीं मानेगा जितनी वालिदैन की बात मानेगा, तो लिहाजा वालिदैन इस हवाले से तरबियत करें। तो ये एक अहम हक था जो वालिदैन के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो औलाद को हलाल हराम की तमीज़ कराएं और उनकी तरबियत ऐसे करें कि वो ये फ़र्क रखें। अब उसके बाद आ जाइए जो मैंने शुरू में बात की थी कि कुरानी मनहज औलाद की तरबियत के हवाले से क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सी ऐसी चीज़ें बयान फरमाई कि जिनके अंदर एक बड़ी इनफरादियत है। वैसे तो कुरान की हर आयत जो है वो हिदायत है, वो इल्मी हिदायत हो, अमली हिदायत हो या इतिकादी हिदायत हो, लेकिन इसके साथ साथ बास जगहों पर जो उसलूब बयान है और जो चीज़ों का बयान है वो हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है। उन्हीं में से एक मकाम है जिसके बारे में यहाँ पर कुछ मैं बयान करूँगा, और ये है सूरह लुकमान की कुछ आयतें। सूरह लुकमान जो है ये हज़रत लुकमान रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर है, और ये एक ऐसी शख्सियत थे कि जो बड़े हिकमत वाले थे, जिनके बारे में इसी सूरत में फरमाया कि हमने लुकमान को हिकमत, दानिशमंदी अता की, समझदारी, दानिश अता की। हजरत अय्यूब अलैहि सलातु वस्सलाम के आप रिश्तेदार हैं और ये उनके ज़माने के करीब के फ़र्द बनते हैं। अल्लाह ताला ने इनका एक वाकया कुरान पाक में बयान फरमाया, और वो वाकया क्या है, वो है औलाद की तरबियत के बारे में जो हमारा मौजू है। खास इसी मौजू के हवाले से ये वाकया है कि हजरत लुकमान रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें रब फरमाता है कि हमने हिकमत अता की, हमने उन्हें दानिशमंदी अता की, हमने उन्हें समझदारी अता की, तो हजरत लुकमान को जो दानिशमंदी मिली उसके इजहार की सूरत क्या बनी, वो अल्लाह ताला ने आगे बयान फरमाई, और वो है औलाद की तरबियत। गोया इसमें एक नुक्ता ये भी है कि इंसान की दानाई में से ये भी है कि वो अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करे। अगर कोई शख्स औलाद को बगैर तरबियत के छोड़ देता है तो भले दुनिया जहान को बड़े बड़े मशवरे देता फिरे और बड़े बड़े लेक्चर और भाषण देता रहे, लेकिन अगर उसने औलाद को नहीं समझाया तो इसकी दानिश किसी काम की नहीं। हाँ, समझाए औलाद ना माने वो एक जुदा मसला है, लेकिन बाकी सारी दुनिया को तो बताता फिरे और औलाद को कभी बैठ के ना समझाए और औलाद बिगड़ जाए तो ये दानिशमंदी नहीं, ये नादानी है। तो हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो दानाई है वो अल्लाह ताला ने कैसे बयान फरमाई, फरमाया कि हमने लुकमान को हिकमत दानाई अता फरमाई, और अब उस दानाई का ज़ुहूर कैसे हुआ कि अल्लाह ताला फरमाता है, याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया और वो उसे नसीहत कर रहे थे, वह इज़ क़ाला लुकमानु लिबनिही वहुवा याइज़ुहु, और याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया और वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। ये नसीहत क्या है? ये है तरबियत का उसलूब, कौन सी चीज़ कितनी अहम है, उस पर कितना फोकस होगा, उसे कितना पहले बयान किया जाएगा और किन किन चीज़ों को बयान किया जाएगा, वो सारी आयतें यहाँ पर और सारी चीज़ें यहाँ पर बयान की गई। ये सूरह लुकमान की आयत नंबर 13 से लेके आयत नंबर 19 तक ये सारी आयतें इसी मौजू के हवाले से कि हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को क्या क्या नसीहतें फरमाई। तो अब आप देखिए कि पहली जो नसीहत है वो फरमाई, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, बेशक शिर्क ज़रूर बहुत बड़ा जुल्म है। यह है पहली नसीहत। उसके बाद दूसरी नसीहत क्या है? फरमाया या बुनैया इन्नहा इन तकु मिसकाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, ऐ मेरे बेटे बेशक बुराई अगरचे राई के दाने के बराबर हो, राई का दाना समझ रहे छोटा सा, जैसे चावल का दाना होता ना इसे भी आप छोटा समझ रहे। तो फरमाया कि ऐ मेरे बेटे कि बुराई अगर राई के दाने के बराबर भी हो, और वो कहाँ पड़ी हो, फरमाया कि किसी पहाड़ की चोटी पे, या वो आसमानों में हो, या वो ज़मीन के अंदर हो, वो छोटी से छोटी बुराई और इसी तरह छोटी से छोटी अच्छाई नेकी वो जहाँ भी होगी, फरमाया या अति बिहल्लाह अल्लाह उसे क़यामत के दिन बंदे के सामने ले आएगा कि ये तूने किया था। बंदा भले उसको यूं करके देखे कि ये है गई तो नज़र भी नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह ताला बंदे के सामने वो अच्छाई वो बुराई ले आएगा कि तूने ये की थी। तो ये है दूसरी नसीहत। तीसरी नसीहत फरमाया या बुनैया अकीम सलात व अमुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन ज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम रखना और अच्छी बात का हुक्म देना और बुराई से मना करना और तुझे जो मुसीबत पहुंचे उस पर सब्र करना, बेशक ये बात बड़ी हिम्मत वाले कामों में से है। तीसरी नसीहत के अंदर कई चीज़ें आ गई। चौथी नसीहत फरमाया वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मराहा, और अपना रुखसार लोगों से गुफ्तगू के वक्त टेढ़ा ना करना, लोगों से टेढ़े मुंह बात ना करना और ज़मीन में इतराते हुए ना चलना, अकड़ते हुए ना चलना, बेशक अल्लाह को इतराने वाला फ़ख्र करने वाला पसंद नहीं है। ये चौथी नसीहत। पांचवी नसीहत फरमाया वक्सिद फी मशीक वग़दुद मिन सौतिक इन अनकरल अस्वातिल सौतुल हमीद, और अपने चलने में अपनी चाल को दरमियानी रखना, तेज़ यूं नहीं और बिल्कुल ही मरियल मरियल ऐसे भी नहीं, अपनी चाल में दरमियानी चाल चलना और अपनी आवाज को कुछ आहिस्ता रखना, चीख चीख के नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, बेशक सबसे ज्यादा नापसंदीदा आवाज गधे की आवाज होती है जो चीखता चिल्लाता है, जब बोलता है पूरा मोहल्ला सुनता। तो यह है पांचवी नसीहत। अब देखिए यहां पर जो मैंने अर्ज किया कि मनहज जो तरबियत का है वो जो सामने आया वो क्या है, अब ज़रा गौर करें। अगर आप पहली बात की तरफ तवज्जो करेंगे, जिसमें फरमाया ला तो शिरक बिल्लाह, ए मेरे बेटे शिरक ना करना। ये शिरक ना करना, इसका ताल्लुक किसके साथ है? इसका ताल्लुक है ईमान और अकीदे के साथ। हजरत लुकमान रदी अल्लाह ताला ने सबसे पहली बात जो अपने बेटे से फरमाई वो ईमान और अकीदे के बारे में, क्योंकि ईमान, सही अकीदा, फिर ईमान पर इस्तेकामत, सही अकीदे पर पुख्तगी, उसमें मजबूती, ये दीन इस्लाम की नज़र में और रब की बारगाह में सबसे अहम तरीन चीज़ है। ईमान का होना, अकीदे का सही होना, अकीदे पर इस्तेकामत, मरते दम तक उस पर डटे रहना, ये इस्लाम की नज़र में सबसे अहम तरीन चीज़ है। बाकी सारी इबादतें, सारी अखलाकियात, सारे मुआमलात, दुनिया जहान के जितने स्टैंडर्ड्स और जितने मेयारात हैं वो सारे बाद में हैं, अल्लाह की बारगाह में अकीदा पहले नंबर पे। तो हजरत लुकमान रदी अल्लाह ताला ने पहली बात जो फरमाई वो अपने बेटे को अकीदे के बारे में फरमाया, ये है पहली बात। दूसरी बात कि अगर बुराई या अच्छाई छोटी से छोटी भी होगी और वो पहाड़ की चोटी पे हो या आसमानों की बुलंदी में हो या ज़मीन की गहराई में हो, अल्लाह ताला इसे ले आएगा। ये दूसरी चीज़ क्या है? ये दूसरी चीज़ अंदर की इस्लाह है, बातिन की इस्लाह। पहली चीज़ ईमानियात थी, उसका ताल्लुक भी दिल के साथ। दूसरी शय, बंदा इस बात पे तवज्जो रखे कि खुदा से कोई शय पोशीदा नहीं, अल्लाह हर शय को देखने वाला है, समीउ बसीर है, अलीमो खबीर है, कोई शय उस पर पोशीदा नहीं, हर शय को जानने वाला, दिल की धड़कन और दिल के अंदर चलने वाले ख्यालात को जानने वाला है। तो जब दिल में ये एतिकाद और दिल में ये मुराकबा और दिल में इस अकीदे का इस्तेहजार होगा तो बातनी इस्लाह, इंसान के अंदर की इस्लाह बड़ी तेजी के साथ होती है। तो ये दूसरी बात थी जो हजरत लुकमान ने अपने बेटे से फरमाई, और ये एक किस्म का जो अकीदा है ये उसी के असरात हैं जो इंसान पर जाहिर होते हैं। ये आपकी दूसरी नसीहत। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकीदे के साथ साथ जो बातिन की इस्लाह है, जो दिल की इस्लाह है, जो अंदर की इस्लाह है, ये भी औलाद की करनी चाहिए, औलाद को ये भी सिखाना चाहिए। तीसरी बात क्या थी? फरमाया कि या बुनैया अकीमिस सलाह, ए मेरे बेटे नमाज कायम रखना। कायम रखने का मतलब क्या होता है? कायम रखने का मतलब है कि जो जाहरी आदाब हैं और जो बातनी आदाब हैं दोनों को पूरा किया जाए। जाहरी आदाब में से वही कि वुजू इंसान का ठीक हो और उसके बाद जब वो नमाज के लिए खड़ा हो तो जो सुन्नतें और आदाब हैं कि सजदे में उसकी निगाह यहाँ होनी चाहिए, क्याम में यहाँ पर होनी चाहिए, हाथ यहाँ तक बुलंद करे और बांधते हुए यहाँ पर बांधे, सजदे में हाथ जमीन पर इस तरीके से रखे, रुकू में इतना झुके, तो ये सारे जो हैं ये जाहरी आदाब हैं। और बातनी आदाब क्या हैं? कि जैसे जिस्म खुदा की बारगाह में हाजिर है, अपने दिल को भी रब की बारगाह में हाजिर करते हैं, ये बात नहीं आता। तो हजरत लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया कि बेटा नमाज कायम रखना, जाहरी बातनी आदाब उसके पूरे करना। तो ये तीसरी नसीहत किस चीज की हुई? ये हुई इबादत के बारे में। तो अकीदा, बातिन की इस्लाह और जाहरी आमाल में से नमाज, ये नमाज की और जाहरी आमाल की तरबियत हुई। अच्छा, उसके बाद अगली चीज जो है वो उसी के अंदर जो बयान की, फरमाया वा अमुर बिल मारूफी वनहा अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। ये नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना क्या है? इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ये काम जो है ये खुद उसकी इस्लामी जिम्मेदारियों में से है, कि इस्लाम की जो ताकीद है वो ये है कि हर मुसलमान मुबल्ले हो, वो नेकी का हुक्म देने वाला और बुराई से मना करने वाला हो। तो एक तो ये पहलू है कि इंसान खुद नेकी करे और फिर नेकी की दावत देने वाला बने, और दूसरा पहलू इसके अंदर ये है कि ये जो भलाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना है, ये खुद मुआशरे की बेहतरी के लिए ज़रूरी है, कि मुआशरा तभी सही रहता है जब उसमें अच्छाई बताने वाले और बुराई से रोकने वाले मौजूद हों। अगर मुआशरे से ऐसे अफराद निकल जाएं और वो ये कहें कि भाई जो होता है होने दो, हमें क्या। तो जब लोग इस रविश पे आ जाएं तो नतीजा ये होता है कि भलाई को कोई प्रमोट करने वाला और अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता, और बुराई की मजम्मत करने वाला रोकने वाला कोई नहीं होता, तो अच्छाई रुक जाती है और बुराई बढ़ती रहती। तो गोया नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, ये इस्लामी एतबार से भी जिम्मेदारी है और ये मुआशरती जिम्मेदारी भी। तो हजरत लुकमान ने अपने बेटे को क्या फरमाया, नमाज के बाद ये भी फरमाया कि मुबल्लिग बनना, मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करने वाला बनना, अल्लाह का पैगाम फैलाने वाला बनना। तो ये इबादत के साथ जो मुबल्लिग बनने की नौइयत है ये उसका बयान है। और फिर उससे अगली बात है, फरमाया वस्बिर अला मा असाबक, मुसीबत आए तो सब्र करना। तो मुसीबत आने पे सब्र करना क्यों बता दिया, इसलिए कि जिंदगी जो है वो सिर्फ खुशियों का मजमूआ नहीं होती। जिंदगी में खुशियां आती हैं तो तकलीफें भी आती हैं, खुशियां हैं तो उसके साथ मुसीबतें भी हैं, सुख हैं तो जिंदगी में दुख भी होते हैं। अब अगर किसी की दुख के एतबार से और परेशानियों का मुकाबला करने की तरबियत ही नहीं है तो नतीजा ये होगा कि जिंदगी में कभी मुश्किल आएगी तो इंसान हौसला हार देगा, हिम्मत हार देगा। तो हजरत लुकमान ने वो नसीहत फरमाई कि जो इंसान को खड़ा करती है, जो औलाद को जिंदगी में जिंदगी गुजारने के लिए एक मजबूत सहारा फराहम करती है, और वह सब्र, मुसीबत का मुकाबला करना, मुसीबत के सामने डट जाना, हिम्मत ना हारना, हौसला ना हारना। और हजरत लुकमान ने साथ ही फरमा दिया इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक यह है बड़ी हिम्मत वाला काम। तो वाकई ऐसा ही है कि सब्र करना जो है ये कोई छोटी बात नहीं होती, बड़ी हिम्मत वाला काम होता है। बेसब्री बड़ी आसानी से हो जाती है, सब्र आसानी से नहीं होता। तो ये है ये औलाद की तरबियत का एक और खूबसूरत पहलू। तो अब ये कितनी चीज़ें हो गई, ईमान हो गया, बातिनी इस्लाह हो गई, उसके साथ नमाज हो गई, और उसके बाद मुआशरे के लिए बेहतरी का किरदार अदा करने वाला हो गया, और उसके साथ आगे जाके अपनी ज़िंदगी के अंदर जो ज़िंदगी के चैलेंजेस के साथ जो निमटना है और जो उसका मुकाबला करना है ये उसका बयान हो गया। फिर उसके साथ आगे मजीद क्या हुआ, मजीद जो है जो बड़ी खूबसूरत और बड़ी शानदार बात बयान फरमाई है वो है कि जो इंसान की मुआशरती अकदार हैं और मुआशरती अखलाकियात हैं, क्या उसका चलने फिरने का अंदाज़ क्या है, उसके गुफ्तगू का अंदाज़ क्या है, उसका मिलना मिलाना कैसे है। तो ये वो कि जिसके ऊपर मैंने पिछले सिलसिलों के अंदर भी बयान किया था कि औलाद की जो आदाब और मैनर्स के एतबार से, मैनर्स ऑफ लाइफ और एटिकेट्स ऑफ लाइफ जो हैं, आदाबी ज़िंदगी जो हैं, इस हवाले से भी तरबियत हो। और हजरत लुकमान ने अपने बेटे की तरबियत के अंदर उस पहलू को भी सामने रखा कि क्या फरमाया, चार बातें इरशाद फरमाई। पहली बात फरमाया वला तुसअ्र खद्दका लिन्नास, और लोगों से बात करते हुए अपना रुखसार टेढ़ा ना करना। ये क्या होता है, ये होता है कि इंसान के अंदर तकब्बुर और उसमें फख्र और गुरूर और उसमें दूसरों को नजर तहकीर से देखना ऐसे हो कि वो किसी से सीधे मुंह बात करना ही पसंद ना करे। अमीर आएगा तो अच्छे अंदाज में मिल लेगा, गरीब आएगा तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करे। तो ये क्या है, ये है टेढ़े मुंह बात करना। अपने बेटे से फरमाया कि लोगों से टेढ़े मुंह बात ना करे। अब ये किस बात की तरबियत है, ये है लोगों से मिलने मिलाने की तरबियत, जिसका ताल्लुक हमारी मुआशरत के साथ है, हुस्ने मुआशरत के साथ। तो अब देखिए हजरत लुकमान ने इसकी भी तरबियत फरमाई। दूसरी बात फरमा वला तमशी फिल अर्द मराहा, और जमीन में इतराते हुए अकड़ते हुए ना चलना, इतरा के अकड़ के ना चलना। ये क्या है, ये एक चलने का जो अंदाज है उसमें जो बुरा अंदाज है उससे मना किया। इसका मतलब यह कि अच्छे अंदाज की रहनुमाई की। तो अब लोगों से बात कैसे करनी है वो, और अपने चलने के अंदर अपनी चाल और अंदाज कैसा रखना है ये उसका बयान होगा। और फिर इसको समझाने के लिए साथ में एक बड़ी खूबसूरत बात है, बल्कि मैं आखिर में उसको बयान करता हूं ताकि हर शेयर के साथ जो है वो उसको जोड़ते हुए बयान करूंगा। तीसरी बात जो इरशाद फरमाई وہ فرمایا وقصد فی مشیک، اور اپنی چال کے اندر درمیانی چال چلنا، چلنے کے اندر ایک انداز جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ اتنی تیزی کے ساتھ چلو کہ لوگ سمجھے پتہ نہیں کون سی مصیبت پڑ گئی یا بھاگا ہی جا رہا ہے اور ہر بندہ متوجہ ہو جائے، اور نہ ایسا ہلکا چلو کہ لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں بیچارہ صدا کا بیمار ہے، ایسا بھی نہ ہو. وقصد فی مشیک، اور اپنے چلنے میں اعتدال والی درمیانی چال چلا. تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی یہ جسے کہیں کہ انداز وہ جو دکھنے میں خوبصورت لگے، جو اس کے پیچھے تربیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ طریقہ کہ جو دکھنے میں خوبصورت لگے. جیسے انسان لباس کے اندر خوبصورتی کو اور جمال کو پسند کرتا ہے تو اپنی چال کے اندر بھی جمال کو پسند کرے. تیسری بات، چوتھی بات جو معاشرتی اعتبار سے بیان فرمائی، وہ فرمایا وَحْبُبْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو ذرا آہستہ رکھنا، آہستہ رکھنا، چیخنا چلانا زور زور سے بولنا یہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زور سے اور چیخ کے بولنا جو ہے یہ انسان کا کام تھوڑی ہے، یہ تو جانور کا کام. سب سے اونچی جو ہے وہ چیخ چیخ کے گلی محلوں کے اندر آواز کس کی آتی ہے؟ گدے کی آتی ہے. آپ گدے کو ذرا گلی محلے کے اندر چھوڑ کے دیکھیں، اس کی جو آواز ہے رینکنے کی، ڈھینچوں ڈھینچوں کی آواز کیسی ہوگی، ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک سنیں. تو جب خدا نے تمہیں بندہ بنایا ہے تو تم گدے کی طرح تو نہ آوازیں نکالو. تو اب اس میں جو ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، ہماری گلی محلوں میں جو ہوتا ہے کہ رات کو جو ہے وہ 2 بجے بھی آ کے اس طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے یا بیڈ روم کے اندر بیٹھے ہوئے، اور آئیں گے جائیں گے تو چیختے چلاتے، ایک دوسرے کو آواز دیں گے تو ایسے کہ کان پھاڑا آواز. نہ یہ تمیز کہ کسی ویٹنگ ایریا میں ہے، نہ یہ تمیز ہے کہ کسی جب وہ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے یا کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے کسی مریض کو تکلیف ہوگی، سونے والے کو تکلیف ہوگی، لوگوں کے گھروں کے باہر کچہری جما کے بیٹھ جاتے ہیں، کہہ کے مارے شور مچا رہے ہیں، بیچارے گھر کے بچے تنگ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو گدوں والی حرکت ہے. اور اسی طریقے سے دنیا بھر کے اندر میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے کہ، اور ہے تو ہمارے ملک میں بھی لیکن ہمارے عمل نہیں ہوتا، کہ ہاسپٹلس کے باہر ہمیشہ یہ اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کیونکہ ہارن نہ بجائے اسکول کے باہر اور ہاسپٹل کے باہر. لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ ذرا ہاسپٹل جا کے دیکھ لیں، آپ کو باہر سے گاڑی والے شور مچاتے ہارن بجاتے نہ ملیں، آپ مجھ سے آگے پوچھ لیجیے گا. اور یہی حال اسکولوں کا ہوگا، اندر بچے پڑھ رہے باہر ہارن پہ ہارن بج رہے. تو یہ کیا ہے؟ وہی ہے وہ جو ان انکر الاصوات، بدترین آواز گدے کی آواز ہے. تو لوگوں کو شعور نہیں ہے اس لیے جانور والی حرکتیں کرتے. تو فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھنا، بے شک سب سے بری آواز ضرور گدے کی آواز ہے، وہ چیختا چلاتا ہے. تو یہ وہ تربیت کی چیزیں کہ جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو فرمائی. اور اس سے آپ سمجھ جائیں کہ جو قرآن کا تربیت کا اسلوب اور منہج ہے وہ کیا ہے، اور قرآن نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان فرمائی ہیں. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے کلام کے اندر میں 2 طرح جو ہے وہ کلام کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت لقمان نے جو بات کہی اس بات کے ساتھ ایک اگلی بات اتنی خوبصورت جوڑی کہ جو پہلی بات کہی ہے وہ دل میں اتر جائے، جو پہلی بات کہی وہ دل میں اتر جائے. جیسے سب سے پہلی بات انہوں نے فرمائی کہ بیٹا شرک نہ کرنا. اب اس کی برائی کے لیے، شرک کی برائی کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الشرك لظلم عظیم، بے شک شرک ضرور بہت بڑا ظلم ہے. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کہ حق اس کا ہو دے کسی اور کو دیا جائے. تو رب ماننا، خدا ماننا، معبود ماننا یہ حق ہے خدا کا، اور یہ اگر کوئی معاذ اللہ کسی بت کو دے دیتا ہے یا کسی اور کو دے دیتا ہے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا. تو حضرت لقمان نے جس بات کی نصیحت فرمائی اس کے ساتھ جو اس کی قباحت ہے، اس برائی کی جو قباحت ہے اور جو اس کی برائی ہے، اسے دل میں اتارنے کے لیے ساتھ میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. پھر دوسری بات دیکھیں، دوسری بات فرمائی کہ اے بیٹا، برائی اچھائی چھوٹی سی چھوٹی بھی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، اور آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، پہاڑوں میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا. اور اب اس کے ساتھ بات کیا جوڑی؟ फरमाया इन अल्लाह लतीफ़ुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला बारीक से बारीक शय को भी जानने वाला है, खबर रखने वाला है। छोटी से छोटी शय भी होगी रब उसे जानता है, देखता है, उसकी खबर रखता है। तो ये जो अल्लाह ताला की सिफत है, सिफात हैं, जब ये साथ में जुड़ जाती हैं तो बंदा कहता ओह इससे रुकना है। अच्छा फिर अगली बात, जब फरमाया कि बेटा सब्र करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, सब्र करना, तो अब उसकी तरगीब के लिए साथ में क्या फरमाया, फरमाया इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये चीज बड़ी हिम्मत वाले कामों में से है। तो ये जैसे होता है ना किसी को जोश दिलाने के लिए, जज्बा पैदा करने के लिए कहा जाता है बेटा करो और काम बड़ा जबरदस्त है, काम बड़ा आला है और तुम कर लोगे। तो हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला ने अपने बेटे को वही हिम्मत दिलाई और वही आली हौसलगी और बुलंद हिम्मती की तरफ जो है वो उनको दावत दी। अच्छा फिर फरमाया कि अपना रुखसार टेढ़ा ना करना बात करते हुए, और जमीन में इतरा के ना चलना, अकड़ के ना चलना। अब इसकी बुराई के लिए फरमाया इन अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह को ये अकड़ने वाले, इतराने वाले, ये फख्र करने वाले पसंद नहीं है। तो जो बात कही उसके साथ आगे उसके मुतालिक वो बात बयान कर दी कि जिससे वाकयातन उस पर अमल करने का जज्बा पैदा हो। अच्छा इसी तरह आगे जो बात आई, फरमाया कि आवाज़ को ज़रा आहिस्ता रखना, पस्त रखना। तो अब नेचुरली जो है बास लोग ज़रा लाउड होते हैं और वो बस जब भी बात करते ख्याल ही नहीं करते इस बात का। तो अब साथ में क्या जोड़ा उसके, फरमाया कि बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़। तो इंसान को एहसास हो जाए जब वो चीख चीख के बोलने लगे, और जब वो रात को घरों के सामने बैठ के लोगों की नींदें ख़राब करे, और जब वे वक्त आके शोर मचाए या घर के अंदर ही इतना चीखे चिल्लाए, तो उसके जहन में आ जाए कि ये बंदे ही इंसान की आवाज़ नहीं है, गधे की आवाज़ है। तो ये देखिए हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला की नसीहत में एक दूसरा पहलू ये है कि एक तो नसीहतें बड़ी जामे किस्म की आला किस्म की नसीहतें, और दूसरा उन नसीहतों के साथ हर एक के साथ एक ऐसी बात को जोड़ दिया कि वो नसीहत दिल में उतर जाए। तो औलाद को समझाने में इन दोनों पहलुओं का ख्याल रखा जाए। एक तो ये है कि नसीहत जिंदगी के सारे उमूर में हो, उसमें दीन भी आए, उसमें अकीदा भी आए, उसमें अखलाकियात भी आए, उसमें नमाज भी आए, उसमें माशरती चीज़ें भी आएँ, उसमें रहना सहना भी आए, उसमें खिदमत दीन का जज्बा भी आए, ये सारी चीज़ें आ जाएँ। तरबियत जो है वो जुज़वी तरबियत नहीं होनी चाहिए, पार्शल नहीं होनी चाहिए कि बस जो है वो माल कमाना तो सिखा दिया बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, या उसको सिर्फ अकीदा सिखा दिया बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं सिखाई, या उसको नमाज तो सिखा दी लेकिन हलाल हराम का फ़र्क नहीं सिखाया, या उसको मैनर्स तो बड़े शानदार सिखाए कि जो भी आता बड़ा खुश होता है, यार माशाल्लाह बच्चे कितने सुलझे हुए बच्चे हैं, वो सुलझे हुए बच्चे तो हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, वो सुलझे हुए बच्चे तो हैं लेकिन उनके अंदर दीन नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो बच्चे बड़े सुलझे हुए हैं बात करने में, खाने पीने के अंदर बड़े सुलझे हुए हैं लेकिन खुदा के बारे में उनके दिल में कुछ नहीं। तो ये नहीं, तरबियत ये है कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक जो इस्लाम की तालीमात हैं उन सब के हवाले से तरबियत की जाए। तो एक तो ये पहलू सीखने को मिला कि तरबियत जो है वो हमा जेहत होनी चाहिए, जामे होनी चाहिए। और दूसरी बात इसके साथ ये है कि तरबियत के अंदर हमेशा जो समझाने का अंदाज है वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, वो दिल में उतारने वाला होना चाहिए, ऑर्डर नहीं होना चाहिए सिर्फ। हमारे यहाँ बास लोग औलाद की तरबियत के अंदर ये भी एक हरकत करते हैं और उसकी वजह से तरबियत नहीं होती, उल्टा औलाद बिगड़ जाती है, बल्कि उसको तरबियत से नफरत हो जाती है। वो क्या है कि बच्चे की तरबियत की बजाय उससे डायरेक्ट जो है बिल्कुल एक ऐसा कमांड एंड ऑर्डर देते हैं कि बच्चा कहता ओह, वो बेचारा डर के मारे तो कर लेगा, दिल से नहीं करेगा। बच्चे को नमाज का बोला ना तो नमाज का ऐसे बोला कि बच्चे की रूह कांप जाए। तो ऐसे नहीं, आप नमाज की मोहब्बत डालें, आप नमाज की मोहब्बत उसके दिल में डालें ताकि बच्चा उस मोहब्बत से नमाज पढ़े, आपके डर से नमाज ना पढ़े सिर्फ। इसी तरह अखलाकियात है, तो अखलाकियात को वो यूं अपनाए कि उसे ये लगे कि हाँ हाँ मैं अच्छा इंसान बनूँ और मुझे ऐसा होना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा ये बोल ले कि बस ये क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया, मरता क्या ना करता, अब्बा ने यही कहा है तो ये करना पड़ेगा, ये नहीं। तो बाज़ औक़ात माँ बाप जो है वो सिवाय डांटने के कोई काम ही नहीं करते। बाप है जब आएगा वो डांटेगा, माँ है उसने हर छोटी बड़ी बात के ऊपर डांट डब्बट और बस मार धाड़ और बुरा भला बस यही कर रहा है। ऐसे घरों में तरबियत नहीं होती, ये या आप याद रखिएगा। और इवन उल्टा माँ बाप और औलाद के दरमियान दूरी पैदा हो जाती है। तो अब हजरत लुकमान रजी अल्लाह ताला अनु का जो अंदाजे तरबियत है, आप जरा उस पर गौर करें तो कितना खूबसूरत है। बड़े प्यार से फरमाते हैं, या बुनैया, ए मेरे बच्चे, ए मेरे बच्चे। बल्कि जो बुनैया है ये तसगीर का सीगा है, ये यानी कि इसके अंदर यूं कह लें कि लाड और प्यार का मफहूम ही होता है कि एक है मेरे बेटे और एक है उसके अंदर भी एक लाड प्यार का जो फैक्टर है वो डालने के लिए उसको तस्गीर के सीगे के साथ ताबीर किया जाता है कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे, ऐ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। तो ये थोड़ा सा उस अंदाज में, मैं तस्गीर का तर्जमा नहीं कर रहा लेकिन उसका जो उसके पीछे मकसद है उस मकसद को उसके अंदर ऐड करके अर्थ कर रहा हूं। तो ये है मुखातब करने का अंदाज, फिर उसके बाद आगे बात, और फिर उसके साथ जो उसकी फजीलत या उसकी जो मुजम्मत है वो बड़े आहसन अंदाज के अंदर उसके सामने बयान कर दी। तो लिहाजा तरबियत जो है वो 99% जो है वो प्यार से होती है, वो मोहब्बत से होती है, वो नरमी से होती है, वो शफकत से होती है। कहीं कहीं कभी कभी किसी बात पे सख्ती करनी पड़ती है, उसकी शरीयत ने इजाज़त भी दी है और उसकी शरीयत ने हुदूद भी बयान की है, लेकिन वो आखिरी स्टेप होता है, पहला नहीं। वो जो सख्ती के साथ तरबियत करने का है वो है आखिरी स्टेप, ना ये कि शुरुआत ही वहां से ली जाए। तो आखिर क्या करेंगे, बच्चा मार देंगे क्या? तो लिहाजा प्यार से शुरू करें और प्यार करना भी सीख लें कि बच्चे से प्यार कैसे करना होता है। बच्चे से प्यार का ये मतलब नहीं कि एक मरतबा तो कहा बेटा और अगली मरतबा मारा थप्पड़ और कह दिया प्यार से समझाया था पहले, मैंने माना ही नहीं तो यूं समझाना पड़ा, तो ये प्यार नहीं है। ये पैकेज के अंदर गोया असल में मुक्का ही था, थप्पड़ ही था। तो लिहाजा तरबियत का जो अंदाज यहाँ कुरान के अंदर बयान हुआ, थोड़ा सा इसे फोकस करें, इंशाल्लाह इसकी बरकतें देखेंगे। और फिर एक और चीज़ कि आप ये देखें कि हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला ने तरबियत के अंदर एक बड़ी अहम चीज़ क्या सामने रखी कि अल्लाह ताला का लतीफ़ होना, खबीर होना, वो हर बारीक से बारीक बात को जानता है, खबर रखता है, हर शय को देखने वाला है, कोई शय उससे पोशीदा नहीं, कोई शख्स की कुदरत से बाहर नहीं। यह है खुदा से दिल का ताल्लुक जोड़ना। आप यकीन कीजिए कि अगर औलाद के दिल का ताल्लुक हम अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ने में कामयाब हो जाए ना, तो यूं समझें कि हमारी तरबियत की हजारों चीजें जो है वो उसके अंदर आ जाएंगी, हमारी तरबियत की हजारों चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। होता यह है कि इस वाले पहलू पे तवज्जो नहीं होती, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की अजमत और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये वाली चीजें जो है ये थोड़ी सी बस जो है ना जस्ट फॉर द टेस्ट जो है ना साथ साथ चल रही होती हैं, और तरबियत समझते हैं कि इससे हटके कर रही। हालांकि आप ये मोहब्बतें जो है ये दिल में पैदा करें और तरबियत को इसके साथ जोड़ दें, फिर आप देखिएगा कि फिर उस तरबियत के जो असरात हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं और कितने ज्यादा होते हैं। तो ये औलाद की तरबियत का एक कुरानी मनहज जो है वो मैंने आपके सामने बयान किया है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हुकुम कुल इबाद आह होगा।